भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कि आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो सीधे कृषि कार्य से जुड़े हों या फिर कृषि आधारित आधारित उद्योग से जुड़े हों, तो उनकी जो आजीविका है वो कृषि पर ही निर्भर रहती है। लेकिन भारत की कृषि की एक और विशेषता है, क्योंकि यहाँ हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की कृषि के स्वरूप को देखते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के प्रदेशों में कृषि हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय प्रदेशों में हो, उनमें आधारभूत भिन्नताएं होती हैं कृषि के प्रकार में, कृषि करने के तरीके में और फसलों में। तो वहीं भारत के एक क्षेत्र में आप जो कि हिम से जकड़ा हुआ है, वो हिमाच्छादित है, वहाँ पर भी हम अलग तरीके की फसलों का स्वरूप देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप अलग अलग है, लोगों का जो उससे जुड़ाव है वो अलग अलग तरीके का है, और कृषि जो उत्पाद हैं वो केवल भोजन के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो विविध प्रकार के उद्योगों में भी वो प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे उनसे शक्कर का निर्माण भी हो रहा है, उनसे कई सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनसे निकले गए पदार्थों से रासायनिक उद्योगों में भी कार्य हो रहा है। वहीं कृषि से भी जुड़े हैं बहुत सारे उद्योग हैं, चाहे उनके लिए उर्वरकों का निर्माण हो रहा हो, चाहे उसके लिए कीटनाशकों का निर्माण हो रहा हो, फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए अगर पदार्थों का निर्माण हो रहा हो। तो एक तरफ जहाँ कृषि दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, वहीं कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी अन्य क्षेत्रों से हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। यानी ये कृषि जहाँ आजीविका भोजन के रूप में आजीविका प्रदान करती है, वहीं वो उद्योगों के रूप में भी हमें हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन भारत की कृषि की एक और विशेषता है कि हम पूरी तरह से जलवायु पर निर्भर हैं, इस विशेषकर मानसून पर निर्भर हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कई बार होता है कि बारिश अच्छी हुई है, मौसम अच्छा है, तो भारत में फसल बहुत अच्छी होती है। कई बार मौसम हमारा साथ नहीं देता और हम कृषि उत्पादन में हम एक बहुत बड़ा गिरावट भी देखते हैं। धीरे धीरे भारत में खासकर कृषि क्रांति, जो जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति के बाद खेती करने के तरीके में परिवर्तन आया। पहले जहाँ हम मानवीय श्रम पर निर्भर कृषि करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद उसमें मशीनरी का प्रयोग किया जाने लगा। हम रासायनिक उर्वरकों की ओर हमने उनका उपयोग बढ़ाया। सिंचाई के लिए सिंचाई के तरीकों की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से हरित क्रांति के बाद जहाँ हमने तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया, हमने नवीन मशीनरी का उपयोग करना शुरू किया, और इसके साथ साथ भारत में कृषि उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यही सारी बातें आज हमारे इस विमर्श का हिस्सा होगी और हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों या आप शहरी क्षेत्र में हों, आपने कृषि को किसी न किसी रूप में अवश्य देखा होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ आपने आप खेतों में भी गए होंगे, हो सकता है आपने कभी न कभी कृषि कार्य में भी आपने अपनी सहभागिता दी हो। शहरी क्षेत्र में है तब भी आप विभिन्न माध्यमों से आप भारत में कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो निश्चित रूप से रखते ही होंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बात की कि भारत विभिन्नताओं का देश है, यह विभिन्नता हमारी स्थलाकृति में है, यह विभिन्नता हमारे जलवायु में है, और यह विभिन्नता हमारी संस्कृतियों में भी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र में हम अलग अलग स्थलाकृति का हम विस्तार भारत में पाते हैं। उत्तर में जहाँ पर विशाल पर्वतमालाएं हैं, दक्षिण में तटवर्ती क्षेत्र हैं, मध्य भारत के क्षेत्रों में आप विशाल पठार को आप देखते हैं। तो इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, और यह स्थलाकृतियाँ हमारे कृषि के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। लेकिन केवल स्थलाकृति ही ऐसी नहीं है जो भारत में कृषि के स्वरूप को प्रभावित करे। सिंचाई की उपलब्धता, मशीनरी का उपयोग, उसके अलावा कृषि में आधुनिक तकनीक का निवेश, तथा बीजों का उपयोग जो आजकल उच्च उपज की किस्में, जिनको हाई येल्डिंग सीड्स भी, वैरायटीज भी कहा जाता है, इनका भी प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही कीटनाशकों और खरपतवार नियंत्रकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरह इन सब के आधार पर, इन सब के प्रयोगों के आधार पर और स्थलाकृति के आधार पर मुख्यतः चार तरीके के कृषि का वर्गीकरण किया गया है। पहले को हम बोलते हैं निर्वाह और वाणिज्यिक खेती। शिक्षार्थियों, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि भारत में लगभग 70% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, तो इनमें से एक बड़ा हिस्सा आता है निर्वाह कृषि का, यानी हम अपने जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर या कृषि कार्य पर निर्भर हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हम अपने दैनिक उपयोग में लेते हैं, अपने जीवन यापन के लिए लेते हैं, और खुले बाजार में बेचने के लिए एक बहुत छोटा हिस्सा जा पाता है। यानी हम अधिकांश उत्पादन का हिस्सा अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा देते हैं। इसकी एक और अगर हम कहें कि विशेषता है कि हम इसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। जीवन निर्वाह कृषि में चूंकि जोत का आकार छोटा होता है, इसमें सामान्यतः सीमांत कृषक ही शामिल होते हैं, जिनके पास बहुत ही छोटी मात्रा में या आकार में भूमि का हिस्सा उपलब्ध होता है, और इसमें वो अपनी आवश्यकताओं के उत्पादन के लिए क्षेत्र के अनुरूप फसलें उत्पादित करते हैं। जैसे उत्तर भारत में आप गेहूं, चना या अन्य दालों का उत्पादन पाएंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में आप चावल का उत्पादन लोग करते हैं, या सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि का कार्य करते हैं या फसलों का उत्पादन करते हैं, तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। जबकि इससे भिन्न वाणिज्यिक खेती है, जो एकदम निर्वाह कृषि के विपरीत है। इसमें उत्पादन का अधिकतर हिस्सा बाजार में बेच दिया जाता है। इस प्रणाली में हम सिंचाई के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं, हम अलग अलग मशीनरी का प्रयोग करते हैं, हम कृषक कोशिश करता है कि वो मानव श्रम का न्यूनतम प्रयोग करे ताकि लागत को कम किया जा सके। वो कीटनाशकों का प्रयोग करता है, उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करता है, और इस तरीके से वो अपने निवेश में तकनीक का प्रयोग करते हुए अधिकाधिक उत्पादन का प्रयास करता है। कुछ विशेष फसलें हैं जो कि वाणिज्यिक खेती में प्रयोग की जाती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, ये ऐसी फसलें हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती में प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा उत्तर भारतीय राज्यों में गेहूं प्रमुख भोजन है, लेकिन हरियाणा में आप पाते हैं कि चावल का प्रयोग वाणिज्यिक खेती के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि उसका प्रयोग वहाँ पर दैनिक जीवन में खान पान की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ चावल का प्रयोग कम किया जाता है। तो जो भी चावल उत्पन्न होता है वो अतिरेक में होता है और उसे बाजार में बेचा जा सकता है। तो इस तरह से वाणिज्यिक एक फसल किसी क्षेत्र के लिए हो सकता है जीवन निर्वाह कृषि के रूप में हो, जैसे अगर आप उड़ीसा, बंगाल में आप या छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो चावल की धान की खेती का प्रयोग जीवन निर्वाह कृषि के रूप में होगा, क्योंकि वहां पर वो भोजन का मुख्य अंग है। जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं है, तो हरियाणा में जो धान का उत्पादन होता है वो बाजार में, खुले बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, तो इसलिए वो वहां पर वाणिज्यिक खेती के रूप में हम देखते हैं। इसके अलावा है गहन और विस्तृत खेती। खेती के इन दो प्रकारों में जो बुनियादी अंतर है वो भूमि की इकाई का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ जैसे क्षेत्र में खेती बड़े आकार में की जाती है, यानी बड़े वृहद क्षेत्र में हम कृषि का कार्य देखते हैं, लेकिन भारत में विस्तृत खेती का प्रयोग लगभग नहीं है। क्योंकि जब हम खेती के लिए देश के एक बड़े क्षेत्र का या एक जोत का जो बड़ा आकार होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। यहाँ पर बड़ा क्षेत्र होने के कारण जो कुल उत्पादन है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ या भूमि की एक इकाई के अनुपात में जो उत्पादन होता है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। लेकिन भारत के उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खेती का प्रयोग होता है वो गहन कृषि के रूप में होता है। यानी यहाँ पर जो जोत का आकार है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन वहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन अत्यधिक होता है। अगर आप देखें तो पंजाब में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में भूमि के 1 एकड़ में जो गेहूं की खेती का उत्पादन है वो अत्यधिक है। यानी प्रति एकड़ उत्पादन यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भी ज़्यादा है। तो इस तरह से गहन और विस्तृत खेती में मुख्य अंतर प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा पर है। इसके अलावा वृक्षारोपण खेती या प्लांटेशन कृषि भी प्लांटेशन खेती भी आप देख सकते हैं। इसमें मुख्यतः बागानी कृषि का प्रयोग हम करते हैं, जहाँ पर चाय का हम प्रयोग करते हैं, चाय की खेती करते हैं, हम रबड़ की खेती करते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी, केला और मसालों का जो उत्पादन है वो बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में इन फसलों का उत्पादन ज़्यादा पुराना नहीं है, विशेषकर 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा इनका उत्पादन शुरू किया जाने लगा। लेकिन आज आप देखें तो भारत चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र होते हुए भी बागानी कृषि में भारत ने काफ़ी प्रगति की है। इसके अलावा इसकी खेती की एक और विशेषता है कि जहाँ पर हम इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं, यानी बागानी खेती करते हैं, वहीं पर आसपास के क्षेत्रों में इसको प्रसंस्कृत करने के उद्योगों का भी स्थापना की जाती है। जैसे अगर चाय की हम खेती कर रहे हैं तो आसपास उसको प्रसंस्कृत करने, उसको पैकेजिंग करने का उद्योग बनता है। जैसे अगर रबड़ का उत्पादन होता है तो आसपास के क्षेत्रों में रबड़ आधारित उद्योगों या जो हम रबड़ की रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं उसको रासायनिक रूप से रबड़ में परिवर्तित करने के उद्योग वहाँ पर स्थापित होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों का एक सम्मिलित रूप हम देखने को पाते हैं। इसके अलावा खेती का चौथा प्रकार है मिश्रित खेती का। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि जब हम कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को एक साथ करते हैं, यानी हम वहां पर खेती भी कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं और साथ साथ हम पशुपालन भी कर रहे हैं। वहां पर हम मात्स्यिकी भी कर रहे हैं, यानी मछलियों को भी पाल रहे हैं, बतख या अन्य पशुपालन के स्वरूप हम अपना रहे हैं। तो इस तरीके से कृषि और पशुपालन, कृषि में कई बार जो कृषि के बाय प्रोडक्ट हैं वो पशुपालन के लिए भोजन, पशुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे पुआल है या गेहूं से निकलने वाला भूसा है। तो इस तरह से खेती और पशुपालन एक साथ चलते हैं, तो उन्हें हम मिश्रित खेती के रूप में हम देखते हैं। शिक्षार्थियों, ये तो बात हो रही थी खेती के प्रकारों की या स्वरूप की, लेकिन आप अगर देखेंगे तो खेती में एक अलग अलग समय पे परिवर्तन भी आए। जैसे एक हरित क्रांति का समय आया जब खेती में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, श्वेत क्रांति आई जब हम दुग्ध उत्पादन की ओर हम बढ़े, नीली क्रांति को हम मात्स्यिकी के साथ जोड़ते हैं जब समुद्र में या मीठे पानी में हम मछली उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया, अगर हम मुर्गी पालन की ओर बढ़े तो उसको पीली क्रांति का नाम दिया गया। उसी तरह सेब के उत्पादन विशेषकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तो उसे गुलाबी क्रांति कहा गया। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग समय पर तकनीक और मशीनरी के प्रयोग के साथ साथ हम एक आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं। इसके साथ बात आती है भारतीय कृषि की विशेषता की। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम कृषि के क्षेत्र में हम अलग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग स्थानिक विशेषताएं कृषि में देखने को मिलती हैं। तो आइए हम बात करते हैं वो कौन सी विशेषताएं हैं। पहली तो बात है, हमने जो शुरू में बात की निर्वाह कृषि की, तो भारत की खेती की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर निर्वाह कृषि का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हमने बात की कि 70% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है, तो इसमें से एक बड़ा हिस्सा निर्वाह कृषि का आता है, जब हमारे पास जोत का आकार छोटा है और सारा परिवार आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है, तो वहाँ पर वो उन फसलों का उत्पादन करता है जो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है। जैसे अगर खान पान में चावल का प्रयोग हो रहा है तो धान का वो उत्पादन करेगा, आटे का हम प्रयोग करते हैं, रोटियों का प्रयोग करते हैं तो हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह के से हम आजीविका के लिए निर्वाह कृषि का प्रयोग करते हैं। हालांकि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा है, लोग कृषि के कार्य के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी साथ में शुरू करते हैं, या परिवार का एक हिस्सा कृषि कार्य करता है तो कुछ लोग अन्य व्यवसाय में लग जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें परिवर्तन देखते हैं। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। 70% जनसंख्या भारत जैसे देश में, जहाँ पर हम 1.4 अरब हम पहुँच चुके हैं लगभग, तो वहाँ पर हम 70% जनसंख्या जब कृषि पर निर्भर है तो हम पाते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर मिलता है। इसके साथ ही खेती का मशीनीकरण, खासकर हरित क्रांति के बाद हम पाते हैं कि धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में हम मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, हम इससे जुड़े हुए उद्योगों में भी उपकरणों का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम फूड के जो बाय प्रोडक्ट हैं उनका हम पुनः पुनः प्रयोग करते हैं। कृषि कार्य में हम जहाँ उच्च उत्पादकता के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पर कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी समय के साथ साथ हम देखने को पाते हैं। इसके अलावा हमारी कृषि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर होता है। हम अक्सर शिक्षार्थियों सुनते हैं, न्यूज़पेपर में हम देख पढ़ते भी हैं, चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में हम सुनते हैं कि हम मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मानसून अगर अच्छा है तो हमारा फसल उत्पादन अच्छा होगा, मानसून में अगर खराबी आ गई या हमें कम बारिश की प्राप्ति हुई तो खेती पर एक नकारात्मक असर देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किया गया कि हम सिंचाई के उन्नत साधनों का, नवीन साधनों का प्रयोग करें, चाहे वो नहरों का प्रयोग हो, तो जिससे कि सिंचाई के लिए हम मानसून पर निर्भर कम हो। हालांकि तब भी निर्भरता है क्योंकि मानसून जल की तो प्राप्ति हमें होती ही है, साथ ही वो भारत में मौसम के परिवर्तन में भी भूमिका निभाता है। तो अगर मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो कृषि पर उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। भारत की जो एक और सबसे बड़ी विशेषता है कृषि की, वो है कि भारत उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध दोनों ही क्षेत्रों में है। यानी हम भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कृषि या कृषि उत्पादन के अलग अलग स्वरूप देखते हैं। यहाँ पर मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो हम पाते हैं कि एक तरफ हम गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, वहीं पर हम फसलों का ऐसे फलों का उत्पादन कर रहे हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, हम धान का उत्पादन कर रहे हैं जिसे अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर हम गेहूं या कुछ ऐसे फसलों का, जौ का उत्पादन करते हैं जिसको कम जल की आवश्यकता होती है। तो भारत में क्षेत्रवार फसलों के प्रकारों में और उसके उत्पादन में भिन्नता भी देखने को मिलती है। एक और विशेषता है कि हम खाद्य फसलों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं और वाणिज्यिक रूप से जो फसलें हैं उनका अपेक्षाकृत कम उत्पादन करते हैं। हालांकि इस पैटर्न में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हम ज़्यादातर अब जो परिवर्तन है वो देखते हैं कि वाणिज्यिक खेती की ओर जा रहे हैं, लेकिन तब भी प्रधानता खाद्य फसलों की है। और जैसे कि हमने बात की कि हम हमारे यहाँ जल मौसम मानसून में भिन्नता है, जलवायु में भिन्नता है, तो इसमें मौसमी पैटर्न भी देखा जाता है कि चावल जहाँ खरीफ की फसल है वहीं रबी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हम क्षेत्रवार और मौसम के अनुरूप फसलों की भिन्नता देखते हैं। अब बात आती है कि भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो शिक्षार्थियों, जैसे हमने बात की कि हम लगभग चार तरीके की फसलें हम अपने यहाँ, खाद्य फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण और बागवानी फसलों का उत्पादन करते हैं। यानी खाद्य फसलें वो हैं जो मानव उपभोग के लिए उत्पादित की जाती हैं सीधे, यानी खाद्य पदार्थों में उनका उत्पादन उपयोग होता है, वो है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और विभिन्न दालें। नकदी फसलों में हम कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन का उत्पादन करते हैं क्योंकि ये उद्योगों के लिए उत्पादित की जाती हैं जिनसे हम वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए वो रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि चाय, कॉफी, नारियल, रबड़ जैसे चीज़ों का उत्पादन होता है, और बागवानी फसलों में हम फल और सब्जियों को देखते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि भारत में मुख्यतः चार प्रकार हैं फसलों के। तो आइए सबसे पहले बात करें खाद्य फसलों की। वैसे तो खाद्य फसलों को आप देखें तो उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। चावल भी है, गेहूं है, मक्का, बाजरा, दाल के अलग अलग स्वरूप हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी खाद्य फसलें देखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ कुछ प्रमुख खाद्य फसलों की बात करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चावल। भारत में चावल का खाद्य पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और भारत के लगभग अधिकांश हिस्सों में हम चावल का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। देश के कुल कृषि क्षेत्र में लगभग एक तिहाई भाग पर हम धान का उत्पादन करते हैं, और आधी से ज़्यादा अधिक भारतीय आबादी को हम धान के से जो चावल का हम प्रयोग अपने प्रमुख खाद्य फसलों के रूप में करते हैं। लेकिन हमने तो बात की कि कैसे हम एक बड़े क्षेत्र में चावल का उत्पादन कर रहे हैं और खाद्य पदार्थ के रूप में एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जा रही है, लेकिन इसके लिए क्या भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, आइए हम अब इसके बारे में बात करें। तापमान, इसके लिए हमें गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और लगभग 24 डिग्री सेल्सियस औसत मासिक तापमान हमें धान की खेती के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा अच्छी उपज के लिए लगभग 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि इसका उत्पादन उस क्षेत्रों में होता है जहाँ पर कि 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में भी आजकल सिंचाई की मदद से चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए चावल के लिए सामान्यतः चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी आदर्श स्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसके साथ ही समुद्र तल से नीचे भी केरल के कुछ क्षेत्र हैं, और पूर्वी राज्य के पहाड़ी ढालों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि इसका उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर ज़्यादा और सस्ता मानवीय श्रम उपलब्ध होता है, क्योंकि इसके लिए आज भी हम मानव श्रम पर ही निर्भर हैं। और अगर इसके क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो इसका उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन हम पाते हैं। शिक्षार्थियों, हमने अभी बात की कि कैसे चावल की खेती किन किन क्षेत्रों में की जाती है और इसके लिए कौन सी जलवायविक दशाएं आवश्यक है। इसके बाद जो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है गेहूं। चावल के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग भारत में गेहूं का होता है खाद्यान्न के रूप में, और इसकी विशेषता यह है कि चावल की खेती के बाद भारत में गेहूं की खेती शुरू होती है, विशेषकर सर्दियों की शुरुआत में और गर्मी की शुरुआत में इसे काट लिया जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत में इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। हालांकि थोड़ा सा समय की विभिन्नता भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका पाई जाती है। भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल से ज़्यादा यहाँ पर गेहूं का प्रयोग हम खाद्य भोजन में पाते हैं। अब बात करें कि इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। पहली बात आती है तापमान की, तो यह मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय चारागाही फसल है, तो इसीलिए इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बुवाई के समय जो एक आदर्श तापमान वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, पकने एवं कटने के लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए चावल से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए हम लगभग पाते हैं कि 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत ही सफल है। हालांकि 100 सेंटीमीटर वर्षा तक के क्षेत्रों में और थोड़े से कम वर्षा के क्षेत्रों में भी हम इसका उत्पादन देखते हैं जहाँ पर इसकी आपूर्ति, जहाँ पे वर्षा जल की कम प्राप्ति होती है, वहाँ सिंचाई के साधनों के द्वारा हम जल की आपूर्ति इसको करते हैं। हालांकि जब इसमें दाने पड़ रहे होते हैं उस समय हल्की वर्षा इसके उत्पादन को बढ़ा देती है। मिट्टी के लिए हम सामान्यतः पाते हैं कि जिस मिट्टी में जल के निकास की हम उत्तम व्यवस्था पाते हैं, वहाँ पर हम गेहूं का उत्पादन अच्छे तरीके से कर पाते हैं, विशेषकर दोमट और चिकनी मिट्टी में। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, हालांकि चावल से कम, और धीरे धीरे हम गेहूं के खेत की खेती में मशीनरी का प्रयोग हम ज़्यादा पाते हैं, चाहे वो बुआई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग हो, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग हो, या कटाई के लिए थ्रेशर या हार्वेस्टर का प्रयोग हो। हम मशीनरी का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो अब धीरे धीरे गेहूं की खेती में ही पाते हैं। इसका जो वितरण है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है, लेकिन भारत के केवल 3 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जो भारत का लगभग 66% से भी ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो ये एक तरह से एक बेल्ट आप पाते हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन हम ज़्यादा पाते हैं। इसके अलावा बाजरा एक ऐसी फसल है जिसके लिए कम वर्षा जल की आवश्यकता होती है। इसकी एक और विशेषता है कि इसको हम जहाँ एक तरफ खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, वहीं इसका प्रयोग पशुपालन के क्षेत्र में यानी पशुओं के लिए चारे के रूप में होता है। इसे अगर मई से अगस्त में जहाँ बोया जाता है, वहीं अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसे कृषि के अलावा औद्योगिक उत्पादन के लिए भी रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग हम करते हैं। इसके अलग अलग स्वरूप भी हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा, कोदो, कुटकी, राका, बाउटी, राजगीरा, ये अलग अलग नेम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं। हालांकि इसको हम एक कैटेगरी में बाजरा के अंतर्गत, ज्वार या बाजरा के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन हम इनके अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन पाते हैं। और एक हम इसमें एक विशेषता ये पाते हैं, धीरे धीरे इस फसल का उत्पादन कम हो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि में वाणिज्यिक खेती का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा, यानी हम इन फसलों से हटकर वाणिज्यिक खेती की ओर हम गए हैं। इसके अलावा हम पाते हैं कि दलहन का एक व्यापक क्षेत्र है भारत में, विशेषकर हम चना, अरहर या जिसे तुअर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, कुलथ, मटर, ये ऐसे अलग अलग दालों के प्रकार हैं जो कि हम पाते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। और इन सब में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है चना। चना एक ऐसी दलहन फसल है जिसका हम खाद्यान्न में उत्पादन कर रहे हैं, जिसे हम सीधे दाल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे चाहे वो नमकीन के रूप में हो, बेसन के रूप में हो, या और भी इससे जो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, वहाँ पर चना एक रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दालों के कुल उत्पादन का लगभग 30% क्षेत्रफल जो है वो चना के अंतर्गत आता है, और इसे सितंबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल के बीच में इसे काट लिया जाता है। इसे एकल फसल के रूप में या कई क्षेत्रों में इसे गेहूं, जौ या सरसों के साथ मिश्रित खेती के रूप में प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए जो आदर्श जलवायु दशाएं हैं वह है कि इसके लिए सामान्यतः 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और हल्के शीतल एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वर्षा जल की आवश्यकता इसके लिए कम होती है, सामान्यतः 40 से 45 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र चने की खेती के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए चिकनी बलुई मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, हालांकि इसको अलग अलग मिट्टी के क्षेत्रों में भी, चाहे वो थोड़ा सा पथरीली भी मिट्टी भी हो, वहाँ पर भी इसका प्रयोग हम पाते उत्पादन हम पाते हैं। अगर हम इसका वितरण देखें तो हम पाते हैं कि लगभग भारत के उत्तर भारतीय अधिकांश राज्यों में इसका उत्पादन होता है, हालांकि इसका 90% उत्पादन केवल 5 राज्यों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र, माफ करें, महाराष्ट्र से आता है। ये तो हम बात कर रहे थे खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फसलों की। इसके अलावा नकदी फसलें हैं, और नकदी फसलों में हम पाते हैं कि गन्ना, कपास, जूट, कॉफी, बीन्स, इसके अलावा तिलहन में मूंगफली, सरसों, ऐसे फसलें हैं जो कि भारत में नकदी फसलों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नकदी फसलों से तात्पर्य यह है कि ये फसलें सीधे भोजन के रूप में प्रयोग न करके ये उद्योगों को दी जाती हैं, जहां वो सामग्री के उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं, यानी कृषक को इनको बाजार में बेचने से नकद पैसा पैसा मिल रहा है, इसलिए इन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गन्ना। गन्ना का आप देखें तो सबसे ज़्यादा चीनी, गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रयोग हम पाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग वाइन इंडस्ट्री में भी होता है, वहाँ यह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिससे खोई यानी इसका जो अवशेष बनता है उसका प्रयोग कागज़ के उद्योगों में किया जाता है, यानी जो लुगदी होती है इसका जो बचा हुआ माल, यानी इसके गन्ने की पिराई के बाद जो शक्कर बन जाती है और गन्ने का जो अवशेष बचता है उसको कागज़ के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक बड़ी व्यापारिक या नकदी फसल है, और शायद हम शक्कर के बिना अपने बहुत सारी फूड प्रोडक्ट की हम उम्मीद या हम उसका सोच ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये एक औद्योगिक फसल है। इसकी एक और विशेषता है कि केवल ये खाद्यान्न के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए रासायनिक विकल्प के रूप में भी ये देखा जा रहा है। इसके साथ इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता और गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। साथ ही इसको किसी भी तरीके की मिट्टी में उत्पादित किया जा सकता है जो कि नमी को बनाए रखे, लेकिन गहरी चिकनी बलुई मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। साथ ही इसके लिए एक समतल क्षेत्र वाले भाग की आवश्यकता होती है जहाँ पर इसका उत्पादन किया जा सके। इसकी एक और विशेषता है कि जैसे हम चावल की खेती में मानवीय श्रम की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है, वैसे ही गन्ने के उत्पादन में भी अत्यधिक मानवीय श्रम आवश्यक है। अगर हम इसकी वितरण की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके तीन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं। पहला है सतलज, यानी पंजाब से बिहार तक गंगा सतलज का मैदानी भाग, जो कि भारत का 51% क्षेत्र कवर करता है गन्ना उत्पादन का। इसके अलावा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान के क्षेत्र जो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत हैं, और तीसरा है तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र। तो ये वृहत क्षेत्र हैं गन्ना उत्पादन के। इसके बाद दूसरी प्रमुख नकदी फसल है कपास। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कपास रेशेदार महत्वपूर्ण फसल है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। लेकिन इसके अलावा एक और इसका प्रयोग है इसके दानों का, जिसका वनस्पति तेल की, यानी कपास के जो दाने होते हैं उसका वनस्पति तेल उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कपास के बीजों का प्रयोग पशुपालन में किया जाता है ताकि इससे ज़्यादा दूध का प्राप्ति हो। और यह मुख्य रूप से खरीफ फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। इसके लिए अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 21 से 23 30 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। इसको मुख्यतः कम वर्षा और कम पाला वाले क्षेत्र चाहिए होते हैं, जहाँ लगभग वर्ष के 210 दिन खुला आसमान हो। इसके अलावा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छी कपास की फसल के लिए प्रारंभ में ऐसे में अधिक वर्षा की प्राप्ति की आवश्यकता होती है, और जब ये पक रहा होता है तब हमें शुष्क और धूप वाला मौसम आवश्यक तो आवश्यक होता है। यही कारण है कि मध्य भारत के क्षेत्र इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा शुरू में प्राप्त होती है और बाद में खुला आसमान और तेज़ धूप होती है। इसके अलावा सतलज और गंगा का मैदान भी एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कपास का उत्पादन हम पाते हैं। ये फसल भी ऐसी है जिसमें ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज तक हम कपास को चुनने का काम मशीनीकृत नहीं कर पाए हैं, तो कपास निकालने के लिए हमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। और उसकी अगर विशेषता है कि इन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में कपास से वस्त्र निर्माण के जो उद्योग हैं वो हमें उत्पादन उनको बनाने के लिए हम स्थापित पाते हैं। इसके प्रमुख चार राज्य हैं उत्पादन के, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हम इसका उत्पादन पाते हैं। इसके अलावा तिलहन फसल की बात करें तो उसमें मूंगफली एक प्रमुख फसल है जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में उत्पादित की जाती है। अगर प्लांटेशन खेती की या बागानी खेती की बात करें तो चाय, रबर, कॉफ़ी प्रमुख फसलें हैं जो कि बागानी खेती के अंतर्गत भारत में प्रयोग की जाती हैं। चाय का उत्पादन हम जहाँ पाते हैं असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वहीं कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। इन सब फसलों के साथ भारत में कृषि की जो चुनौतियां हैं वो बहुत व्यापक हैं। पहली बात तो यह है कि हम लगातार निर्वाही कृषि में सम्मिलित हैं। दूसरा, आज भी हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा है, हम मशीनीकृत नहीं हो पाए हैं, सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। तो आज भी हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कृषक भी और सरकार भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है ताकि हम कृषि को अद्यतन कर सकें, उन्नत कर सकें और कृषि उत्पादन बढ़ा सकें।